ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 5 अध्याय का शीर्षक है मैत्रेय से विदुर की वार्ता और श्लोक संख्या है 3। जनश्च कृष्णाद् विमुखश्च दैवाद् अधर्मशीलश्च सुदुःखितश्च अनुग्रहायेह चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनश्च। अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ध्यान से सुनिए। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो मेरे पीछे दोहरा यह अनुवाद। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है, अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाच्याकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जनश कृष्णा विमुखश्च दैवात् अधर्मशीलश्च सुदुःखितश्च अनुग्रहा एह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनश्च। हे प्रभु महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती हैं जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तो ये जो प्रसंग है जिसमें जो विदुर दूर दूर भ्रमण करते हुए कहां पहुंच गए, हरिद्वार। तो उद्धव वैष्णव सदाचार जानते हैं, वैष्णव एटिकेट क्या आचरण होता है जो वैष्णव का, तो उपदेश देने में सर्वसमर्थ थे उद्धव, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, विदुर को मैत्रेय मुनि के पास भेजा। तो एक भक्त की जो शोभा है वो इस वैष्णव सदाचार से बढ़ती है। वास्तव में भक्त होने के बावजूद भी यदि सत आचरण नहीं है, वैष्णवता के जो नियम आदि हैं उनको हम अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं, तो हम केवल नाम के वैष्णव हैं। तो वैष्णव की शोभा या वैष्णव अलंकृत होता है जब उसका शरीर ये जो सत आचरण है उससे भरा रहता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस भक्त की बहुत प्रशंसा करते थे जो भक्त वास्तव में वैष्णव सदाचार के नियमों का कठोरता से पालन करता है। तो हर एक आश्रम के अपने नियम है, ब्रह्मचर्य आश्रम के अपने नियम है, गृहस्थ के लिए अपने नियम है, वानप्रस्थ के लिए है, संन्यास के लिए है। तो उन दायरों को जैसे हम लांघना शुरू करते हैं, बहुत इजी ले लेते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन संकट से भरा रहता है। और कृष्ण के स्मरण से हमारा हृदय खाली रहता है और माया के विचारों की बाढ़, माया के विचारों के जो लहरें हैं वो हमारे हृदय में उठती रहती हैं और हमें उसमें डुबोती रहती हैं। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि वो व्यक्ति जो इस वैष्णव सदाचार से विमुख हो जाता है, वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, सारे शास्त्रों का ज्ञान उसके अवगत क्यों ना हो, उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जिस प्रकार से फल खत्म होने के बाद पंछी उस पेड़ को छोड़ देते हैं, उसी समय वैसे ही मृत्यु के समय सारा ज्ञान उस व्यक्ति का हर लिया जाता है। इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं, सनातन गोस्वामी वैरागी हैं। तो सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में थे तो चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ मंदिर में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे और सनातन गोस्वामी को भी वहां जाना था प्रसाद के लिए, लेकिन सनातन गोस्वामी को दो रास्ते थे, एक तो शॉर्टकट एक था और एक दूर दूर से घूम के जाने वाला भी था। तो शॉर्टकट रोड में क्या था, जब ये उस दिन बहुत कड़ी धूप थी और सनातन गोस्वामी महाप्रभु इंतजार कर रहे थे गोविंद के साथ, तो सनातन गोस्वामी पहुंचे चैतन्य महाप्रभु के पास, तो देखा कि उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। पांव में उस समय तो चप्पले होते नहीं थे, चप्पल पांव में फोड़े आ गए थे। तो सनातन गोस्वामी की ऐसी स्थिति को देखकर महाप्रभु ने पूछा, सनातन क्या हुआ आपको? तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, महाप्रभु ने पूछा कहां से आए हो? कहते हैं मैं तो समंदर की ये जो बालू है उसके ऊपर चलते चलते यहां तक पहुंचा हूं। महाप्रभु ने कहा दूसरा भी तो रास्ता था, जगन्नाथ मंदिर के सामने से आते तो बहुत शॉर्टकट मेरे पास पहुंच जाते। लेकिन सनातन गोस्वामी ने कहा कि मैं तो तुच्छ हो, पतित हो, म्लेच्छ हो, मैं यदि वहां से जाता तो मेरा स्पर्श जगन्नाथ के सेवकों को होता और मेरा उनको स्पर्श होने के कारण जगन्नाथ की सेवा में बाधा पहुंचती, इसके कारण मैंने ये दूसरा पद लिया। महाप्रभु आनंदित हुए। महाप्रभु ने कहा तुम भक्त हो, तुम यदि इसका पालन नहीं करोगे तो कौन करेगा? महाप्रभु ने कहा। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने आध्यात्मिक जीवन में कुछ मर्यादा को हमेशा याद रखना चाहिए। अपने आश्रम की मर्यादा है, हाँ, और हम भक्त हैं, तो उन मर्यादों को जैसे हम थोड़ा सा लांघते हैं तो फिर हम टलमल होते हैं और फिर हम सोच नहीं सकते कि हमारे जीवन में तृणावर जैसा जल्द ही बवंडर आने वाला है और उससे हमारी कोई रक्षा कर नहीं सकता। इसी कारण से एक जो भक्त है उसके लिए वैष्णव सदाचार अत्यधिक आवश्यक है। और वास्तव में जिस भक्त का पहचानी है, डिवोटी की पहचानी है, हाँ, उसके चाल ढलन, हाँ, उसका कहते ना क्या कहते, चाल ढलन से पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है, कैसा है। तो डिवोटी का पता वैसे ही चल जाता है जो उन्नति कर रहा है। तो इसी कारण से प्रभुपाद भी, प्रभुपाद को पूछा वैष्णव कौन है, प्रभुपाद ने कहा द जेंटलमैन, जो सज्जन व्यक्ति है वो वैष्णव है। और जेंटलमैन का मतलब भी है जिसने वास्तव में इस वैष्णवता के गुणों को सीखा है और अभ्यास करते हुए अपने जीवन में डालने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि ज्ञान होना कोई बड़ी बात नहीं है। भौतिकवादी लोग कितने ऐसे ज्ञानी हैं जिनको गीता पूरी कंठस्थ है, हमसे भी ज्यादा विद्वान है, लेकिन हाँ उन्होंने क्या नहीं किया, उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं किया है। तो उसी प्रकार से आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना, जानना पर्याप्त नहीं है भक्त बनने के लिए। भक्त बनने के लिए ये वास्तव में जो भक्तों के गुण हैं उनको अपने जीवन में ढालना ये अति आवश्यक है। इसलिए उद्धव कृष्ण के इतने अधिक प्रिय थे और मां कृष्ण को इतना भरोसा था उद्धव के ऊपर। और वास्तव में कृष्ण अपना हृदय किसी के पास खोलते नहीं है, और खोला तो किसी के पास खोला, उद्धव के पास खोला। उसी व्यक्ति के पास आप अपना हृदय खोलते हो जिस पर आपको क्या है, पूर्ण रूपेण भरोसा है। हाँ, तो भगवान को इतना भरोसा था उद्धव पर। क्यों क्यों इतना भरोसा? क्योंकि उद्धव सर्वश्रेष्ठ भक्त थे द्वारका में। उद्धव को भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे भागवतम के 11th कैंटो में एक श्लोक आता है जिसमें उद्धव के लिए कृष्ण कहते हैं, न साधयति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धवा न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जितम। कि हे उद्धव, मुझे योग आदि के द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, सांख्य योग आदि के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा कोई कह सकता है मैं बहुत स्वाध्याय करूंगा, तपो बहुत बहुत बड़ी बड़ी तपस्या करने से, त्याग हो बड़ा त्याग करने से, हाँ, इससे मुझे आकृष्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, ये चीजें कोई कहेगा कि ये आकृष्ट नहीं कर किया जा सकता भगवान से, इसलिए हमें ये सब चीजें नीडेड नहीं है। लेकिन ये क्या है, भक्ति में हमें सहायता करती है। इसलिए भगवान कहते यथा भक्तिर ममोर्जित, जितना मुझे भक्ति जीतती है, आकृष्ट करती है, ये बाकी चीजें उतनी ही मुझे खींचती नहीं है अपनी ओर। इसी कारण से भगवान उद्धव को एक दिन कहते हैं संध्या के समय में, उद्धव मुझे ये मेरी जो पत्नी है लक्ष्मी वो भी उतनी प्रिय नहीं है, और ये शिवजी शंकर है वो भी मुझे इतने प्रिय नहीं है, बलराम भी मुझे इतना प्रिय नहीं है, उद्धव जितने क्या हो तुम मुझे अधिक प्रिय हो। तो क्यों? क्योंकि उद्धव वास्तव में भगवत भक्ति के ज्ञाता थे। उद्धव पहले तो ज्ञानी थे और उद्धव पर कृपा करने हेतु भगवान ने मथुरा से उनको भेजा ट्रेनिंग के लिए। तो भक्ति में आते हैं तो ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा भक्तिमय जीवन में ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। ये दो चीजों से हमें लगता है कि भौतिक जगत में ये नीडेड है, नहीं, भक्तिमय जीवन में तो ये परम आवश्यक है। इसलिए बाकी कई सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद का जो आंदोलन है, यहाँ प्रभुपाद ने इन दो चीजों पर बहुत जोर दिया। यदि हम अपने जीवन में भक्त के अधीन होकर ट्रेनिंग नहीं प्राप्त करते, भक्तिमय जीवन का एजुकेशन, शिक्षा नहीं ग्रहण करते सीरियसली, तो हम अच्छे भक्त नहीं बन सकते। हाँ, कई साल हम बिता सकते हैं, केवल शरीर का साइज आदि बढ़ सकता है, लेकिन हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। हाँ, तो हृदय में परिवर्तन के लिए है ट्रेनिंग एजुकेशन। तो भगवान की ये कृपा थी उद्धव के ऊपर, कहां भेज दिया उनको? वृंदावनम, वृंदावन में जाओ ट्रेनिंग लेने के लिए। लेकिन हमें वृंदावन जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे बीच में वैष्णव गण है, उनके अधीन होकर हम सीखते हैं तो फिर हम देख सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारे आध्यात्मिक जीवन में आ सकता है। तो उद्धव के प्रति भरोसा था, भरोसा उस व्यक्ति पर किया जा सकता है जो व्यक्ति कभी विश्वासघात नहीं करेगा और कोई आघात नहीं करेगा। तो भगवान को इतना भरोसा उद्धव के ऊपर, क्योंकि उद्धव इन वैष्णवता के गुणों से पूर्ण रूपेण अलंकृत थे। इसलिए हम अपनी शोभा को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सौंदर्य को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें जो वैष्णव गुण है उनको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण से सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको इन 26 गुणों का वर्णन किया। और इवन जो देवहूति है, देवहूति ने भी जब पूछा कि मैं इतने सौभाग्यशाली थी, देवहूति के समान सौभाग्य किसी का नहीं है। सोचो क्या सौभाग्य है, पति महाभागवत है कर्दम मुनि, कर्दम मुनि इतने बड़े भक्तों की भगवान स्वयं उनके लिए आते हैं गरुड़ के ऊपर बैठकर, और भगवान उनका भगवत भक्ति देखते हैं तो भगवान के आंखों से जल की बूंद गिरती है। ये जहां तपस्या कर रहे थे वो बिंदु सरोवर बनता है बूंद गिरने के कारण, और भगवान आकृष्ट हो जाते हैं उनके तपस्या और भगवत भक्ति से। और जब इनका विवाह होता है देवहूति से, तो देवहूति उनकी सेवा आदि करती है, और उनको देवहूति को पुत्र भी कौन मिलता है? साक्षात भगवान कपिल। तो वो कहती है कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य है, पति महाभागवत, पुत्र साक्षात भगवान, लेकिन मैं तो ठगी गई। हाँ, कहती कि मैं इतना बड़ा सौभाग्य होने के बावजूद भी मैंने इसका लाभ नहीं उठाया। क्यों? अनियंत्रित इंद्रिय। देवती कहती मेरी समस्या क्या है? अनकंट्रोल इंद्रिया। हाँ, मेरी ये इंद्रिया पागल है, और जब ये इंद्रियों का पागलपन सवाल हो जाता है, भूत किसको लगता है तो देखा वो कैसे करता है। हाँ, हमारे एक भक्त को भूत ने थोड़ा सा पछाड़ लिया था, तो मेरी सेवा थी उनका टेक केयर करना, और रियली पावरफुल था, कई महीने बीते उनसे उनकी देखभाल करना, मतलब बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता है। तो
वो बैठ जाते तो पूरा दो घंटे बैठ ही जाते, मैं प्रसाद की प्लेट लेके दो घंटा उनके सामने बैठा ही रहता। वो कहां चले गए, तो एक बार तो टेम्पल का बड़ा गेट से कूद मार के चले गए। तो वैसे ही ये इंद्रिया हमें पागल बना देती हैं। और फिर भगवान कहते हैं ये जो इंद्रिया है ये जब शक्तिशाली हो जाती हैं, इंद्रिय अर्थ, इंद्रियों का जो अर्थ है उसको हम पूर्ण करने के लिए जब सोचते रहते हैं तो फिर व्यक्ति पागल हो जाता है, एक जगह सरलता से नहीं बैठ सकता। सोचो भागवतम क्लास में हम बैठे, हाँ इंद्रिया में जीवा हमारी कहे कुछ रस का आस्वादन करनी है, यहां रहेगी नहीं, वो दौड़ेगी। आप कुछ देखने की इच्छा करती रहती हैं, हाँ भौतिक सौंदर्य को, तो आप नींद नहीं आ सकती, हाँ क्योंकि भोग करने की भावना है। इसलिए प्रभुपाद पंचम स्कंद में कहते हैं हाँ तीन लोगों को नींद नहीं आती, योगी, रोगी और भोगी। तो जो भोग करने की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, इंद्रियों का प्रमाद या इंद्रियों के कारण हम पागल हो जाते हैं, तो हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए इंद्रियों की तुलना किससे की गई है, सर्पों से की गई है। हम अपने साथ पांच बहुत शक्तिशाली सांपों को लेकर घूम रहे हैं, और सांप क्या धारण करते हैं अपने दांतों में, विष। इसलिए इंद्रियों को, इंद्रियों के साथ क्या कहा गया है, विषय, इंद्रिया भी है और फिर उनके क्या है, विषय है। तो विषय मतलब विष, तो इंद्रिया सदैव विष उगालती है। तो इसलिए प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कि एक भक्त को सपेरे के भांति होना चाहिए। सपेरा ये जो सांप है कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उसको अपने ट्यून में नचाता रहता है, उसके ट्यून में नहीं नाचता। हम सब इंद्रियों के ट्यून में नाचते रहते हैं पूरे दिन, रात्रि में भी और दिवानिशी भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं। तो इस प्रकार से सपेरा सावधान रहता है, ऐसे नहीं कि सपेरा एक सेकंड के लिए भी ये हो जाए, आग बंद कर ले और अपनी बिल बजाती रहे तो फिर कोई भी सांप कुछ कर सकता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण गीता में कहते हैं कि इन इंद्रियों के संपर्क में व्यक्ति को हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इंद्रियों के माध्यम से सुख प्राप्ति की इच्छा रखता है वो वास्तव में निश्चित रूप से कष्टों का सामना करता है। इसलिए भगवान गीता में बुद्धिमान व्यक्ति कौन है उसका दो स्थानों में वर्णन करते हैं। एक तो भगवान पांचवें अध्याय में कहते हैं, यही संस्पर्श जावोगा दुख यो नयेवते अत्यंतवंत कौन्तेय नते शूरमते बुधा। कहते यही संस्पर्श जा भोगा, ये इंद्रियों के माध्यम से जो स्पर्श सुख है, जो भोग प्राप्त होता है, उसमें जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो रममान नहीं होता। क्यों नहीं रममान होता बुद्धिमान व्यक्ति, क्योंकि ये सारे जो सुख है भौतिक, ये अंत में क्या देने वाले हैं, दुख ही देने वाले हैं। हम सबको ये अनुभव है अपने जीवन में, कितनी बार हमने वो गलतियां की हैं भौतिक सुख के लिए, हम भोग करने के लिए, लेकिन फाइनली क्या अनुभव किया है, दुख। इसलिए भगवान कहते आद्यंतवंत कौन्तेय, आदि और उसका अंत क्या है, दुख है। आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रममान नहीं होता, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। तो बुद्धिमान व्यक्ति करता क्या है फिर आनंद नहीं लेता, तो दसवें अध्याय में कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। वहां भी भगवान ने कौन सा शब्द यूज किया है, बुधा। वहां रममान नहीं होता तो रममान कहां होता है, भगवान कहते रममान होता है मेरे भगवत भजन में। बुद्धिमान व्यक्ति मेरा भजन करता है, इस प्रकार से कृष्ण कहते हैं। तो इसी कारण से ये देहोवती कहती है कि मैं तो ठग गए, कि मैंने मेरे अनियंत्रित इंद्रियां हैं, तो फिर वो अपने पुत्र कपिल देव को पूछती है क्या करना चाहिए मुझे, आप साक्षात भगवान ही हो, मुझे कुछ उपदेश दो। सोचो उपदेश जहां से मिल रहा है उसमें हमें अपनी जो भौतिक योग्यताएं हैं उनको भूल जाना चाहिए। सोचो माँ अपने पुत्र से सीख रहे हैं, है कि नहीं। वहां शुकदेव को समय जब भागवतम का प्रवचन कर रहे हैं वहां उनके गुरु, गुरु के गुरु सारे बैठे हुए हैं सुनने के लिए, व्यासदेव वहां बैठे थे, नारदा वहां थे सुनने के लिए। तो इस प्रकार से हाँ जब ये सुना तो कपिल देव कहते हैं कि क्या करना चाहिए, हाँ जो भगवान के भक्त हैं उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों के प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है, वो मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का दरवाजा खोल देता है। तमो द्वारम योषित संगी संगा, जो भौतिक आकर्षण है, योषित मतलब जिसको भोगा जा सकता है, योषित शब्द जिसे संस्कृत में कहा गया है, योषित मतलब वो वस्तु जिसका भोग कर सकते हो। तो दो, हम कई चीजों का भोग करते हैं, पुरुष स्त्री का भोग करना चाहता है, स्त्री पुरुष का भोग करना चाहती है, इसलिए योषित शब्द यूज करते हैं। तो योषित संगी संगा तमो द्वारम, हाँ कपिल देव कहते हैं कि जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, तमो द्वारम नरक का दरवाजा उस व्यक्ति के लिए खुलेगा। इसलिए कि आपको, हे मेरी माँ, आपको क्या करना होगा, वैष्णव की शरण ग्रहण करनी होगी। फिर वो बुद्धिमान थे, वो पूछती है भक्त की शरण बताओ, भक्त कौन है। कपिल देव कहते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका सूरदर सर्वदेनः अजात शत्रवा शांतः साधवा साधु भूषणः। कौन है साधु, जिसमें ये गुण है वो वास्तव में साधु है। साधु जैसी दाढ़ी, साधु जैसे वस्त्र धारण करने से साधु नहीं बनता, साधु बनता है उसके मनोवृत्ति से। इसलिए प्रभुपाद ने इस आंदोलन को नाम क्या रखा, कॉन्शियसनेस, हाँ कृष्ण भावना। जिसके पास भावना साधु की है वो वास्तव में साधु है। वस्त्र साधु के होना, आश्रम साधु का होना, वो साधुत्व नहीं है। साधुत्व क्या है कि उसके पास वास्तव में वो साधु की भावना है, और साधु की भावना क्या है इस श्लोक में हम वर्णन की जा रही है। और ये श्लोक बहुत शक्तिशाली है और बहुत शिक्षाप्रद है, जिसमें वो कहते जनश कृष्णा विमुखश्च दैवात। दैवात मतलब माया, भगवान की ये जो माया प्रकृति है उसके मोह के कारण जो जनश है, जीव है, वो क्या हो गया है, कृष्णात विमुखश्च, कृष्ण से उसका मुख अलग हो गया है। अधर्मशीलश्च सुदुखितश्च, तो दो चीजें हो जाती है इस श्लोक में कहते हैं। जब जीव माया के प्रभाव में आता है तो तुरंत वो कृष्ण को भूलता है, और जैसे कृष्ण को भूलता है तो उसके साथ दो चीजें होती हैं। सबसे पहले वो अधर्म का आचरण करने लगता है, अधर्म का आचरण, और हर वर्ण और आश्रम का अपना क्या है, धर्म है। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है, ब्रह्मचारी का है, गृहस्थ का है, वानप्रस्थ का है, सन्यास का है। तो जैसे ही कहते कृष्ण से विमुख हो गया, मतलब भक्ति में जैसे ढिलाई आ गई, हरे नाम ठीक से नहीं हो रहा है, भक्तों का संग ठीक से नहीं हो रहा है, श्रीमद् भागवतम श्रवण कीर्तन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वो व्यक्ति माया के प्रभाव में आता है, दैवा। और जैसे आता है तो उससे सबसे पहले एक चीज उसके साथ शुरू होगी, वो क्या करेगा, अधर्म का आचरण, धर्म का पालन नहीं, चुपके से अधर्म का आचरण करता रहेगा। और फिर अगली चीज उसके साथ क्या होगी, यहां कहते हैं सुदुखितश्च, वो नहीं कहा दुख, नहीं कहा, क्या कहा, सुदुख, उसको अपने जीवन में बहुत बड़े दुख का सामना करना पड़ेगा, सुदुखितश्च। तो लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति के लिए हाँ, इससे छुटकारा देने के लिए और एक व्यक्ति अवेलेबल है, और वो कौन है? वो कहते हैं अनुग्रहायेह चरन्ति नूनां भूतानि भव्यानि जनार्दनश्च। तो ऐसे व्यक्ति पर अनुग्रह करने के लिए, अनुग्रह का मतलब है दया, करुणा, कंपैशन, अनुग्रह करने के लिए भव्यानि, भव्यानि एक शब्द है जिसका मतलब है सबसे बड़ा परोपकारी व्यक्ति, और वो कौन है? भगवान के महान भक्त। तो ऐसे भव्यानि भूतानि जीवों पर कृपा करने के लिए अनुचरन्ति, अनुचरन्ति मतलब विचरण करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हैं, क्योंकि वो किसके लोग हैं? तो यहां कहते हैं जनार्दनश, वो अपनी इच्छा से नहीं करते, किसकी इच्छा से? जनार्दन, कृष्ण की इच्छा से वो पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, इसलिए उन लोगों को गोष्ठ्यानंदी कहा गया है। तो इस प्रकार से यहां उस महान भक्त का वर्णन किया जा रहा है, विदुर कहते हैं। ये शब्द किसके हैं? विदुर के हैं, और वास्तव में विदुर क्वालिफाइड है ये आचरण करने के लिए। इसी कारण से जब विदुर ने महाभारत के युद्ध से दूर निकल गए, जब दुर्योधन के साथ उनके वार्तालाप हुआ, और वापस जब महाभारत के युद्ध के उपरांत विदुर हस्तिनापुर आते हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए सारे पांडव, द्रौपदी, कुंती आदि बाहर निकलते महल से, और जैसे ही बाहर निकलते हैं तो युधिष्ठिर उनको प्रणाम करते हैं विदुर को, और विदुर को कहते हैं कि वास्तव में आपको ये तीर्थों का भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो क्या हो? तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि स्वातस्तेन गदावृतान, आप तो इतने शक्तिशाली भक्त हो भगवान के कि तीर्थों में जाते हो तीर्थों को पवित्र करने के लिए। क्या ऐसे सामर्थ्य है एक भक्त तीर्थों को भी पवित्र कर सकता है? क्योंकि वो सदैव अपने हृदय में स्व अंतस्तेन गदावृतः, वो सदैव अपने हृदय में कृष्ण को लेके चलता है, इसी कारण से वो जहां जहां जाता है उस स्थान को तीर्थ में कन्वर्ट करता है। इसलिए प्रभुपाद की तुलना ऐसे महान आचार्य से की गई है, जहां जहां प्रभुपाद गए वहां वहां उन्होंने तीर्थ बनाए। प्रभुपाद को पूछा, स्वामी जी आप ही कुंभ मेला में क्यों आए हो? यहां तो लोग आते हैं अपने पापों का दोहन, पापों को दूर करने के लिए। प्रभुपाद ने कहा, हम उसके लिए नहीं आए हैं, हम क्या करने आए हैं? सारे जो कुंभ मेले में लोग आए हैं उनको, जो कृष्ण से एक प्रकार से विमुख है, उनको कृष्ण भावना देने के लिए आए हैं। तो इस कारण से भगवान का जो भक्त है उसकी तुलना गंगा से भी श्रेष्ठ की गई है। गंगा शुद्ध करती है, जब बारंबार जाओ उसमें स्नान करो, गंगा र परश हैले पछाते पावन, और क्या है आगे? दर्शने पवित्र कर यही तुम्हारा गुण। तो गंगा के पास आपको जाना होगा, उसमें स्नान करना होगा बारंबार, लेकिन भगवान के जो महान भक्त हैं उनका दर्शन करने मात्र से शुद्ध होता है व्यक्ति और भगवान की शरण ग्रहण करता है। सच्चिदानंद महाराज वो कहते हैं कि मैं कैसे भक्त बना, वो प्रभुपाद को देखने मात्र से उनके हृदय में परिवर्तन आ गया। एयरपोर्ट में देखा कि क्या ज्वलंत सूर्य के भांति तेज है, प्रभुपाद के सौंदर्य और इन चीजों को देखा दंडवत प्रणाम हो गया उनके प्रति, और उनके जीवन पूर्ण रूपेण चेंज हुआ और कृष्ण की सेवा में वो नियुक्त हो गए। इसलिए जो भगवान के भक्त है वो जो विमुख जीव है, एक है कृष्ण उन्मुख, कृष्ण की ओर अपना मुंह जिसने किया है, और दूसरा है कृष्ण के पास है लेकिन देख कहा रहा है माया की ओर। सोचो आप टेंपल हॉल में हैं, डेटिस है सामने, लेकिन हम डेटिस को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं? माया, क्योंकि माया कृष्ण से भी अधिक सुंदर हमें लग रही है। तो मतलब कृष्ण के नजदीक होकर भी यदि हमारा मुंह माया की ओर है तो हम कृष्ण विमुख हैं। माया जगत में होकर जिसका मुंह कृष्ण की ओर है वो वास्तव में कृष्ण उन्मुख है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भारतीयों की ये स्थिति है, भारतीय भगवान के नजदीक है लेकिन देख रहे हैं अमेरिका की ओर, और अमेरिकन इतने दूर है लेकिन कहां देख रहे हैं, भारत की ओर, कृष्ण की ओर। तो इसी कारण से जो भगवान के ऐसे महान भक्त हैं वो विचरण करते हैं और उनके अंदर ये गुण भरा होता है दया की भावना। इसलिए भगवान कहते हैं परहिते रता, भक्त का एक गुण का वर्णन जब करते हैं कृष्ण गीता में तो कहते परहिते रता, दूसरों के हित के लिए सदा रत रहता है, वो अपने कष्ट की कष्ट के बारे में नहीं सोचता है। इसलिए प्रभुपाद जब लेटर साइन करते थे तो हमेशा लिखते थे यूर एवर वेल विशर, आपका सदैव शुभ चिंतक। इस संसार में कौन हो सकता है किसी का शुभ चिंतक, हम तो कुछ समय के लिए जब हमें किसी से कुछ मिलता रहता है वहां वहां प्रशंसा आदि होती है तब तक हम उसके फॉलोवर होते हैं, उसके शुभ चिंतक होते हैं। जैसे वो हमारे शत्रु के रूप में व्यवहार करता है हमारे अगेंस्ट, तो हम क्या बन जाते हैं, उसके सबसे प्रथम महान शत्रु बन जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जैसे महान भक्त जिनको कहा गया है अजात शत्रुवा, जैसे युधिष्ठिर का कोई शत्रु नहीं था, कोई उनको शत्रु माने वो बात अलग है, लेकिन उनके हृदय में उनकी शत्रुता किसी से भी नहीं। उसी प्रकार से जो महान भक्त है वो अजात शत्रुवा है, उनका कोई शत्रु नहीं है और दया की भावना है, और वो दया में है, करुणा में है, वो कोई भेदभाव नहीं करते। इसलिए कपिल देव ने कहा सर्वभूत हिते रता सूरदम सर्वभूतानाम, जो गुण भगवान में है वो भगवान के महान भक्त में है। हाँ, तो भगवान के जो भक्त है उनमें ये जो दया का गुण है, करुणा का गुण है, वो बहुत अधिक भरा हुआ है। कृष्ण को कहा गया है दया सागर, सागर हो सकता है कृष्ण करुणा सिंधु, लेकिन वो सागर जब बाहर अपने सीमा लांघ के बाहर जाता है तो वो डिवोटी है। कौन है? डिवोटी है। सागर में आपको स्नान करना है तो उसके पास जाना पड़ेगा, वो आपको जल्दी से डुबाएगा नहीं, आप उसमें घुसोगे तब डूबोगे। हाँ, तो ये उसकी करुणा एक प्रकार से। लेकिन जो भक्त है सागर है वो भी करुणा का सागर है, लेकिन सागर जब अपनी सीमा को तोड़ के बाहर जाता है तो वो डिवोटी कहा गया। इसलिए इस करुणा को वितरण करने के सामर्थ्य भगवान में नहीं था, सामर्थ्य नहीं था, इसलिए कृष्ण को क्या बनना पड़ा, भक्त बनना पड़ा, और ये करुणा से सारे जगत को डुबाना पड़ा। आनिया प्रेमेरा वन्या चौधरी के बेड़ा है कि प्रेम की बाढ़ महाप्रभु ले आ गए नित्यानंद प्रभु के साथ और सारे जगत को उन्होंने डुबो दिया। इसलिए प्रभुपाद ने हमारे मंदिरों में गौर निताई की स्थापना की है। अब गौड़िया मठ या बाकी जगहों में जाओगे तो वहां केवल महाप्रभु है या केवल गौर गदाधर है, लेकिन यहाँ क्या विशेषता है कि यहाँ गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ है और ये दोनों क्या है, करुणा की बाढ़ है और प्रीचिंग की प्राधान्यता है। इसलिए इस बार में गौर निताय क्यों है डिफरेंट मोड, क्योंकि इसमें क्या है, प्रचार की प्राधान्यता है। इसी कारण से क्योंकि इसके द्वारा गौर निताय जो करने के लिए आए हैं वह प्रेम की बाढ़ से सबको डुबाने के लिए वो चाहते हैं। इसलिए जो भक्त का गुण है ये उसके अंदर दया की भावना होती है। तो जैसे वर्णन आता है कि एक व्यक्ति गोदावरी में स्नान कर रहा था एक संत, और वो देखा कि उसमें जल में बिच्छू डूब रहा है तो उसने क्या करना चाहा, उसको उठाना चाहा। वो उठाने जैसा जाता तो काटता और तुरंत वो पानी में फिर से गिरता और वो साधु फिर से उसको उठाता, फिर बाहर लाने का प्रयास करता, वो काटता और गिरता। तो ऐसे कई बार हो गए, एक व्यक्ति ऊपर से देख रहा था तट पर, उन्होंने कहा छोड़ दो ना, कितना आपको ये काट रहा है फिर भी उसको बाहर लाने का प्रयास कर रहे हो। उन्होंने कहा ये तो उसका स्वभाव ही है और मेरा भी स्वभाव क्या है, उसके प्रति दया दिखाना। ऐसे प्रभुपाद है, इतने हिप्पीज, लेचाज, यवान, भक्त लोग क्या करते, हमेशा प्रयास करते उस जीव को उठाने के लिए, लाने के लिए। इसलिए भक्त हमें बारंबार उठाते, चलो मंगल आरती, चलो भागवतम क्लास, चलो सेवा के लिए चलो। लेकिन हम नहीं दौड़ना नहीं चाहते, हम दौड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए जो भक्त का ये गुण है दया, ये प्रमुख है और वो समदर्शी है, भेदभाव नहीं करता। इसलिए पंडित कौन है इसका वर्णन गीता में कृष्ण करते हैं, तो कहते हैं विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुने चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडित वो है जो इन सबको समान दृष्टि से देखता है, क्या देखता है, कृष्ण के जीव है ये, कृष्ण के अंश है, लेकिन किसी कारणवश इस संसार में गिर गए हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है एक महान भक्त का, कौन वो डिवोटी है, वासुदेव दत्त। तो वासुदेव दत्त का वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, जहां ये ऐसे भक्त थे कि जिनका बातें सुनकर चैतन्य महाप्रभु रो पड़े। आज तक चैतन्य महाप्रभु रोए नहीं थे, हाँ ठीक है वो कृष्ण के लिए रोए, लेकिन एक भक्त ने ऐसी चर्चा की भगवान चैतन्य के साथ और उनके हृदय की ऐसी उन्नत भावना को देखकर महाप्रभु रो पड़े। हाँ उनका नाम क्या था, वासुदेव दत्त। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, तो उस समय अलग अलग भक्त नवद्वीप मायापुर से जगन्नाथपुरी की यात्रा में जाते थे और वहां मिलते थे। तो महाप्रभु पहली बार जब ये सब लोग गए तो इन सब भक्तों को मिला, महाप्रभु मिले, तो महाप्रभु ने हर एक भक्त जब मिल रहा था तो उसकी प्रशंसा करने लगे, गुणगान करने लगे। अभी हमें कोई मिलता है तो हम पहले पूछते उसका, हाँ उसको डांटने लगते, फटकारने लगते, उसके दोषों को बोलने लगते, तुमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। लेकिन महाप्रभु क्या सिखाते हैं, हाँ जैसे वो भक्त आ गए, महाप्रभु ने इतना गुणगान उनके गुणों का करने लगे, तो उनमें से एक भक्त थे वासुदेव दत्त। जैसे महाप्रभु ने वासुदेव दत्त को देखा, चैतन्य महाप्रभु उठे, उनका आलिंगन किया और उनकी महिमा का वर्णन करने लगे, मानो चैतन्य महाप्रभु के हजारों मुख हो। फिर महाप्रभु के मुख से जब उनका प्रशंसा सुना, तो जब भक्त अपनी प्रशंसा सुनता है तो उसको कांटों के समान चुभती है, लेकिन हमें तो जो रोज के फूल होते हैं है ना, गुलाब के, उसके समान आनंद महसूस होता है। निज गुण सुनि दत्त मने लज्जा पाया निवेदन करे प्रभुर चरण धरिया। तो अपनी प्रशंसा सुन के चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उनको बहुत लज्जा महसूस हो गई, और फिर उन्होंने महाप्रभु के चरण पकड़े और चरण पकड़ते हुए उनके चरणों में निवेदन किया। क्या निवेदन किया, जगत तारिते प्रभु तुमार अवतार मोर निवेदन एक करह अंगीकार। हे चैतन्य महाप्रभु, सारे जगत का उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है और आप मेरी एक बात प्लीज एक ही बात सुनिए और ये निवेदन ये रिक्वेस्ट आप स्वीकार कीजिए। करते समर्थ तुम्हें हो दयामाय तुम्हें मन करत वे अनायसे हाय। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब कुछ करने में समर्थ हो और निसंदेह आप सबसे अधिक दयालु हो और आप जो चाहे वो आसानी से कर सकते हो। चैतन्य महाप्रभु को वो कहते हैं, तो क्या वो चाहते थे, उनके जैसा प्रार्थना इस संसार में या हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं की। जो प्रेयर वासुदेव दत्त ने भगवान से की, वासुदेव दत्त ने जो भगवान के चरणों में निवेदन किया, वो आज तक नहीं किया किसी ने। तो वो कहते हैं, जीवेर दुख देखी मोर हृदय विदरे सर्व जीवेर पाप प्रभु देह मोर शिरे। वासुदेव दत्त ने कहा कि हे कृष्णा, जीवों का दुख देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है, फटते जा रहा है, सारे जीवों के पाप आप मेरे सर पर दे दो।
मुझे दे दो। हाँ, इतनी बड़ी इच्छा उन्होंने व्यक्त की कि दूसरों के पाप भी मुझे क्या करो, आप मुझे प्रदान करो, मैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जीवेर पाप लैया मुई करो नरक भोग, सकल जीवेर प्रभु गुच्छा भवरो। उन्होंने कहा कि सारे जीवों के पाप मुझे प्रदान करो और मुझे नरक में भेज दो, लेकिन सारे जीवों को इस भौतिक जगत से मुक्त करो। ये कोई सर्वसाधारण भक्त के हृदय में ये भावना नहीं आ सकती। जिसके हृदय में वास्तव में कृष्ण के लिए सर्वाधिक प्रेम है, वही भावना, ऐसी भावना उस भक्त के हृदय में आ सकती है, हम सबके नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत महाराज इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि इस कारण से जीसस क्राइस्ट से भी जो वासुदेव दत्त है वो महान है, क्योंकि उन्होंने तो कहा केवल मैं अपने समाज के लोगों का पाप लूंगा, लेकिन वासुदेव दत्त क्या कहते हैं, पूरे ब्रह्मांड के जीवों का पाप मेरे सर पर दे दो। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि गौरांग महाप्रभु के जो प्रेमी भक्त है उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता इस संसार में। महाप्रभु के भक्तों से अधिक कोई श्रेष्ठ डिवोटी नहीं हुए हैं इस संसार में। एतशुने महाप्रभुर चित्त द्रविला, अश्रुकंप स्वर भंगे कहिते लागिला। वासुदेव के इन वचनों को जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो उनका हृदय द्रवित हो गया और चैतन्य महाप्रभु अश्रुकंप, उनके आंखों से आंसू बहने लगे और महाप्रभु कांपने लगे। चैतन्य महाप्रभु को बोला नहीं जा रहा था, चैतन्य महाप्रभु फिर भी बोले, तुम्हारा विचित्र नहे तुम्ही साक्षात प्रहलाद, तुम्हारे ऊपर कृष्ण संपूर्ण प्रसाद। वो कहते कि वासुदेव दत्त तुम्हारे लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि तुम साक्षात कौन हो, प्रहलाद के अंश हो, प्रहलाद हो। और प्रहलाद की भी यही भावना थी। प्रहलाद महाराज की शिक्षा को हम देखते हैं सातवें स्कंद में भागवतम के, तो वहां जब भगवान नरसिम्हदेव उनको कहते हैं कि मुझे इस जगत से, नरसिम्हदेव कहते कि चलो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ले चलता हूं आपको, वो कहते नहीं। एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुये प्रपतत प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिना भगवान् ग्रहेता सोहं कथं न विसृजे तव भृत्य सेवा। वो कहते एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे अहि मिंसा। प्रहलाद कहते कि हे नरसिम्हदेव, मैं तो ऐसे कुएं में गिरा था जो सांपों से भरा हुआ था। कामाभिकाम मनु ये प्रपतत प्रसंगान, और वहां भौतिक कामनाओं से घिरा था और ऐसे ईर्ष्यालु परिवार में मेरा जन्म हुआ है और ऐसे कुएं में था मैं आसुरों के, वहां क्या किया, सुरर्षिनाम आपके एक महान भक्त नारद ने मुझे वहां से उठा लिया, और तो मेरा ये प्रथम कर्तव्य है क्या, न विसृजे तव भृत्य सेवा, आपकी इस भृत्य ने जिसने मुझे ऐसे गंदे नाली से उठा लिया है और आपका भक्त बना लिया है, उनकी सेवा करना मेरा क्या है, प्रथम कर्तव्य है। उनकी सेवा छोड़कर मैं क्यों जाओ, आपके पास भी नहीं जाना चाहता, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं। उसी प्रकार से प्रभुपाद ने हम सबको जो नाली के कीड़े हैं, जो गटर में भौतिक सुख की कामना के लिए घूम रहे थे, उन सबको उठा उठा के यहां ला दिया है। तो प्रथम कर्तव्य क्या है, प्रभुपाद की शिक्षाओं को समझकर उन शिक्षाओं का वितरण करना, ये जो कृष्ण भावना है हाँ उसका प्रचार करना। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि साधु तो बहुत है इस संसार में, कुछ साधु है जो हिमालय में जाते हैं अपने उद्धार के लिए, लेकिन हे भगवान मुझे वहां जाने की कोई कामना नहीं है, मैं तो ऐसे विमुख आपसे विमुख जीवों के बीच में रहना चाहता हूं और उनको कृष्ण भक्ति देना चाहता हूं। ये प्रहलाद की भावना थी। और प्रहलाद ने इतना भी कहा, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ज्यादातर लोगों को इस भौतिक संसार से भय लगता है। प्रहलाद कहते मुझे
इस भौतिक संसार से कोई भय नहीं है क्योंकि मैंने कला सीख लिए है। आपका जो नाम रूप गुण लीला है उसका उच्चारण करना मैंने सीख लिया है और उसमें मेरा मन लगा हुआ है, इसलिए मुझे इस संसार से कोई भय नहीं है। तो वास्तव में वही प्रचारक बन सकता है जिसका मन कृष्ण में लगा है। तो प्रभुपाद कृष्ण दे सकते हैं क्योंकि उनके पास कृष्ण है, हम कृष्ण नहीं दे सकते। हम प्रभुपाद को क्या कर सकते हैं? असिस्ट कर सकते हैं, केवल असिस्ट कर सकते हैं। वो कृष्ण दे रहे हैं, कोई कहे कि हम भी कृष्ण दे रहे हैं, हमारे लिए कृष्ण देना असंभव है क्योंकि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है, कृष्ण तो प्रभुपाद के पास है। इसी कारण से जब महाप्रभु ने यह सुना उन्होंने कहा तुम तो प्रहलाद हो साक्षात, तुम्हारे और आपके ऊपर कृष्ण की सारी कृपा है। कृष्ण से सत्य करे जे मागे भृत्या, भृत्यवांछा पूर्ति विनो नाही अन्य कृत्य। तो वासुदेव दत्त को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण से ही सत्य करे, कृष्ण वही सत्य करते हैं जो उनका सेवक मांगता है, और भगवान के पास दूसरा बिजनेस ही नहीं है। भृत्यवांछा पूर्ति बिना नाही अन्य कृत्य, अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के अलावा भगवान के पास कुछ काम नहीं है। नारद ने इच्छा की कि ये जो दो नल कुंवर और मणिग्रीव पागल है ये वृक्ष बन जाए नंद महाराज के आंगन में, और फिर वो गिड़गिड़ाने लगे कहा है ना भगवान आपका उद्धार करेंगे। भगवान को कितना परिश्रम करना पड़ा, उनको उखल से कहां बांधा गया था, लेकिन वहां नारद के वचनों को पूर्ति करने के लिए पूरा उखल खींच खींच के लाना पड़ा और वृक्षों के बीच में ले जाना पड़ा। हाँ, तो भगवान का बिजनेस क्या है? भक्त जो इच्छा करता है उसकी वो पूर्ति करते हैं। तो ऐसी जो डिजायर उन्होंने व्यक्त किए थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण के पास तो सबसे अधिक बल है, कृष्ण के पास सारी शक्तियां हैं, कृष्ण क्यों आपको उन सबका पाप भोगने देंगे? नहीं दे सकते कृष्ण आपको उनका पाप भोगने के लिए। कृष्ण तो स्वयं ही ऐसे जीवों का उद्धार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात चैतन्य महाप्रभु ने कहे, महाप्रभु ने कहा तुम्हें जा रहे तवांच से है वैष्णव, वैष्णवेर पाप कृष्ण दूर करे सब। तो भक्त कैसे बन सकता है व्यक्ति सरलता से? यदि कोई महान भक्त डिजायर करे ये डिवोटी बन जाए, केवल महान भक्त की इच्छा के कारण कृष्ण उस भक्त उस व्यक्ति को महान भक्त बना देते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में भी भक्तों से प्रार्थना याचना करनी चाहिए कि आप कृपा करिए कि मैं भक्त बनूं, आप इच्छा करो मैं डिवोटी बनूं। तो इसलिए इन्होंने महाप्रभु कहते तुमने जो इच्छा की है ना कि ये जीव वैष्णव हो जाए, इनका उद्धार हो जाए तो ये निश्चित होगा, इसलिए ये बहुत आवश्यक है। और ये कब संभव होता है? जब हम भक्तों को वैष्णव जैसे प्रभुपाद जैसे आचार्य हैं गुरुवर्ग है उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो वो जो प्रसन्न होते हैं तो उसके द्वारा उनकी प्रसन्नता में ही हम वास्तव में भक्त बनने लगते हैं, महान वैष्णव बनने लगते हैं। तो ये बहुत सुंदर लीला है, आगे कभी पढ़ी जा सकती है। तो जहां चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे वासुदेव दत्ता कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक वृक्ष है उलुम्बर का वृक्ष जिसमें असंख्य फल लगते हैं, एक फल गिर जाए तो पेड़ को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है बहुत सारे जिनकी फलों से तुलना की गई है, एक ब्रह्मांड के सारे जो वैकुंठ चले जाए तो कृष्ण को कोई हानि नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से आज का श्लोक वास्तव में याद करना चाहिए, ये जो श्लोक है कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, तो इसमें दोनों चीजें बताई हैं, एक तो हमारे भौतिक जगत में पतन का कारण और दूसरा क्या है, हमारे ऊपर कृपा करने वाले भक्त का जो स्वभाव है। महाभागवत का वर्णन इस श्लोक में अपने मुख से कर रहे हैं, जनश्च कृष्णा विमुखश्च दैवात् अधर्मशीलश्च सुदुःखितश्च अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनश्च। तो एक चीज इससे सीख सकते हैं कि भक्तों को हमेशा देखे हम किस भावना से, जनार्दन शब्द, कि ये लोग भगवान के लोग हैं, किसके हैं, भगवान के हैं। इसी कारण से शास्त्र कहते हैं एक शिष्य को अपने गुरु को कैसे देखना चाहिए, कि ये राधा रानी का सबसे प्रिय डिवोटी है, इसलिए ये प्रेष्टाय शब्द यूज होता है। प्रेष्ट मीन्स प्रिय, कृष्ण प्रेष्टाय, कृष्ण के क्या है, प्रिय है भूतले। तो इस प्रकार से आज के श्लोक से ये सारी शिक्षाएं हम स्वीकार कर सकते हैं, और जो एक महान प्रचारक है उसके उसका वर्णन इस श्लोक में विशेषता किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के श्रील प्रभुपाद के समवेत गौर भक्त वृंद के निकाय गौर प्रेमानंदे।